शांति। हम सभी के बीच में राज्यों की ब्रह्मा कुमार राजू भाई पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। आपका संक्षिप्त में परिचय। आपका लौकिक जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक छोटे गांव के आध्यात्मिक परिवार में हुआ। सन 1960 से आप इस ईश्वर विश्वविद्यालय की गतिविधियां आपके ही लौकिक घर में शुरू से हुई तथा बचपन से ही योगी जीवन जीने का संकल्प लिया। आप 1972 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित रूप से विभिन्न डिपार्टमेंट में अथक सेवाएं देते रहे। आप 1976 से दीदी मनमोहिनी जी के साथ हिंदी मुरली को कंपोज करने की तथा ईश्वर विद्यार्थियों के पुरुषार्थ को सरल बनाने के लिए सार रूप में वरदान अथवा स्लोगन के रूप में विशेष पॉइंट्स के द्वारा सर्व ब्राह्मण परिवार को विशेष सेवाएं दे रहे हैं। राज्य एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ग्राम विकास प्रभाग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मुरली श्रवण के साथ टाइप करके विश्व कोने कोने तक तत्काल सारे विश्व में पहुंचाने का आपका विशेष योगदान है। आप मुख्यालय के पांडव भवन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन के फोटोकॉपी डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। दादी जानकी जी के द्वारा मुख्यालय से जो प्रति मास स्व उन्नति हेतु पत्र पुष्प निकलता है, जिसमें विशेष अव्यक्त इशारे, परमात्मा प्रेरणाएं, दादी जी की प्रेरणाएं अथवा देश विदेश में चल रही ईश्वरीय सेवाओं का समाचार होता है, वो आप प्रकाशित करते हैं। इन सब सेवाओं के साथ साथ मुख्यालय से दादी जी के तरफ से पत्र व्यवहार करने का कार्य भी आप देखते हैं। विश्व के चौहों दिशाओं में भ्रमण करते हुए आप यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, फिजी, मॉरिशस जैसे अनेक देशों में वैश्विक स्तर के महासम्मेलनों में संबोधित किया तथा टेलीविजन इंटरव्यू देकर विभिन्न देशों की आध्यात्म सेवाओं के को गति प्रदान की। आपको परमात्मा पिता द्वारा अव्यक्त रूप में विशेष दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। आपने ईश्वरीय महावाक्यों को संग्रहित कर समय प्रति समय अनेक पुस्तकें जैसे ज्ञान सरिता, ज्ञान सुमन, ज्ञान वीणा, ज्ञान के अनमोल मोती, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त मुरलियों का सार जैसे अनेकों पुस्तकें लिखी। सतत ज्ञान अध्ययन के कारण आपकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का खजाना से भरपूर है तथा आपने योग की गहन अनुभूति की है। अपने क्लासेस अथवा प्रवचनों के द्वारा आप अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप वैश्विक स्तर के महासम्मेलन, सेमिनार और कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न अभियानों का कुशल संचालन कर रहे हैं। शाश्वत योगी खेती योजना और ग्राम दत्तक योजनाएं जैसी सेवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसे महानुभव हम सभी के बीच में है। आज हम सभी भट्टी के भाई बहनों को समर्पणमयता द्वारा संपन्नता के बारे में इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही क्लास के साथ साथ 6:30 से 7:30 बजे योग में भी कमेंट्रीज के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। अभी राजू भाई द्वारा हम क्लास सुनेंगे।
ओम शांति। आप सभी ने मधुबन तपस्या भूमि में तपस्या के साथ साथ कई अनुभवी भाई बहनों के द्वारा क्लासेस सुने हैं। मैं आज आपको क्लास कराने के मूड से नहीं आया हूं। कुछ अनुभवों के सागर में समाया जाए, बाबा भी बच्चों को अनुभवी मूरत बनाना चाहते हैं। संपन्नता और संपूर्णता जो हम सभी बाबा के बच्चों का मूल लक्ष्य है, ब्राह्मण सुफरिश्ता बनना हमारी यही रेस है कि हम इतने समर्पण में हो जाएं मन से, वचन से, कर्म से, तन मन धन समय जो भी हमारे पास शक्तियां हैं, बाबा के आगे सब कुछ अर्पित करके उनके समान बन जाएं, यही हम सब की रेस है। हम सब ने बाबा की जीवन चरित्र को देखा है, समझा है, पढ़ा है और अपने विद्यालय की आदर्श दादियां जो उसी रेस में सबसे आगे चल रही हैं, उनको भी हम सब बहुत नजदीक से देखते और अनुभव करते हैं। संपूर्णता के सभी लक्षण उनके जीवन में दिखाई देते हैं। हम सबकी पढ़ाई का मूल लक्ष्य, जिस लक्ष्य की ओर रेस चल रही है, वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। इसी लक्ष्य को सामने रख करके हम सब भिन्न भिन्न रीति से संपन्न बनाने के लिए स्वयं को कोई न कोई तीव्र गति का पुरुषार्थ करते हैं और इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए आप सब इस तपस्या भट्टी में आए हैं। हम सब के सामने जब लक्ष्य रहता है तो लक्ष्य के प्रमाण और लक्षण भी आते जाते हैं, इसलिए संपूर्णता हम सबका लक्ष्य है और संपूर्णता का आधार है संपन्नता। जब हर गुण हर शक्ति में संपन्न बनते जाते हैं तो संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त करा देती है। उसके बाद वो उसके अंदर कुछ भी समा नहीं सकता। हरेक ब्राह्मण आत्मा नॉलेजफुल तो है, ज्ञानी तो आत्मा है, लेकिन बाबा नॉलेजफुल आत्माओं को अपने समान पावरफुल, सक्सेसफुल, फेथफुल बनाना चाहते हैं। कितना हम सब नॉलेज के साथ साथ पावरफुल बने हैं, ऐसी शक्तियां हमारे जीवन में आ जाएं जो आने वाली परिस्थितियों को बहुत सहज रीति से सामना करके उनको पार कर सकें। क्योंकि जब संपन्न और संपूर्ण बनने का हमारे सामने लक्ष्य रहता है तो ऊंचे लक्ष्य के सामने परीक्षाएं भी ऊंची आती हैं और कोई न कोई परीक्षा हरेक ब्राह्मण आत्मा के सामने आती है। अगर उन परीक्षाओं में वो हलचल में आ जाता है, हिल जाता है, तो संपन्नता खत्म हो जाती है। क्योंकि संपन्नता वैसे भी कोई चीज भरपूर हो जैसे कहते हैं अगर घड़ा फुल है तो हिलना डुलना बंद हो जाता है, हलचल समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अगर हम संपन्नता के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं तो कोई भी बातें आएंगी उसमें हलचल नहीं होगी, बहुत स्थिर माइंड से एक रस स्थिति से अचल अडोल रह करके उसका हम सामना कर सकेंगे। तो सभी इसके साथ साथ चेक करते रहना कि क्या हम ऐसी संपन्नता की समीपता का अनुभव करते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा थोड़े समय में ही, वैसे तो 33 साल साकार बाबा के कार्य को चले, शिव बाबा ने उनके द्वारा पार्ट प्ले किया, लेकिन आप सबने कुछ बातें सुनी होंगी कि ब्रह्मा बाबा जब संपन्न और संपूर्ण बने कुछ ही समय का वो तीव्र पुरुषार्थ था उनका, करीब 1-1.5 साल के अंदर ही बाबा ने अपनी संपूर्णता का आवाहन किया और वो ऐसा बन गए। उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया उन बातों पर हम सब ध्यान दें। आप सब ने सुना होगा ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां थी, एक ही व्यक्ति हर प्रकार की बातों में सामना करना, बच्चों के द्वारा समाज के द्वारा इतने बड़े परिवार को लेकर के चलना, सब प्रकार की बातों को सहन करना, सब कुछ होते हुए भी बाबा ने धीरे धीरे अपने आप को सब बातों से समेट लिया, विस्तार को समेट लिया। और बाबा के सामने अगर कोई बहुत लंबे समाचार लिखता था तो बाबा भी उस समाचार पर ध्यान नहीं देते थे, उसका सार क्या है। कोई बात करने आता था, इस बच्चे की बातों का सार क्या है, वो सार में सुन करके उसको समा करके उसी समय उसका हल दे देते थे। सबसे धीरे धीरे परिवार के बीच में रहते हुए न्यारे होते गए, एक बाबा के प्यारे और सबसे न्यारे, जबकि बच्चे इतने थे सामने, बहुत बाबा का बच्चों से प्यार था, अपने हाथ से खिलाना पिलाना बिठाना सुलाना। यहां तक भी आपने सुना होगा बहुत छोटा सा पांडव भवन ये था, अगर 50 बच्चे भी आ जाते थे तो उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए। तो बाबा कहते थे आओ बच्चे मेरे चारपाई के नीचे आके सो जाओ इधर। बहुत प्यार था बच्चों से, जरा भी पालना में संबंधों में कोई भी प्रकार की कोई कमी अनुभव नहीं करने दी। लेकिन इतना सब प्यार होते हुए भी जब संपूर्णता की लगन लग गई, समर्पण तो थे ही, समर्पण करने के लिए कुछ उनके पास बचा ही नहीं था, जो कुछ लौकिक में था वो तो बाबा की परवेशता के साथ साथ समर्पित कर दिया। और सबसे बड़ा समर्पण था इस देहभान का, इस समर्पण से में भी नंबर 1 हो गए, कभी भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कभी भी कोई ने बाबा की प्रशंसा की हो तो बाबा हमेशा कहते थे बच्चे देहधारी दलाल को क्यों याद करते हो, ये क्या करता है, करण करावन हार तो ऊपर बैठा है, बाबा करा रहा है। इतना निरहंकारी निर्माण चित बन गए जो अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कोई भी परीक्षाओं में घबराए नहीं, बेफिक्र वासा बन गए, सब फिक्रों से फारिग, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं। कोई भी परीक्षाएं बाबा के सामने आई बहुत बड़ी परीक्षा तो ये थी, कितने सब बच्चे और एकदम भंडारा खाली, कुछ भी नहीं, 400 लोगों का भोजन बनना है और भंडारे में 4 आने भी नहीं है। आप समझ सकते हो, कोई भी आपके परिवार में 2-4 बच्चे भी हों और आपने बहुत ठाट बाट प्यार प्रेम से पाला हो और एकदम बेगरी पार्ट शुरू हो जाए, उस समय क्या स्थिति होगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना निश्चिंत कि बाबा के बच्चे, इन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित किया है, पालनहार वो है, अपने ऊपर कोई जवाबदारी नहीं रखी, इतना एकदम बाबा के प्रति संपूर्ण समर्पण कि बाबा इनको खिलाएगा, बाबा इनकी रक्षा करेगा, बाबा इन्हें भूखा नहीं रखेगा, इतना संपूर्ण निश्चय था। और उसके आधार से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन दोपहर को भोजन न मिला हो। भले सुबह नाश्ते के समय बाबा सैर कराने के लिए उन्हें पहाड़ों पर ले जाते थे, जंगल में ले जाते थे, कहते थे बच्चे आज का नाश्ता यहीं करना है, करौंदे होते हैं जंगल में, पहाड़ में जामुन होती है, उस समय जब आए हैं शुरू में ही जो भी फल थे जंगल के, खा पी करके 11-12 बजे तक सैर करके आते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे और 1 बजे बेल बज जाती थी, भोजन बन जाता था, नियम बना हुआ था। जैसे 10 बजे पोस्ट आती है तो 10 बजे की पोस्ट में कुछ न कुछ जरूर आएगा, कहाँ से आएगा वो पता नहीं है, कोई पैसा भेजेगा, कोई ड्राफ्ट भेजेगा, कहीं न कहीं से आएगा और 2-3 घंटे के अंदर सब सामग्री आएगी और भोजन बनेगा। तो इतना बाबा का एकदम समर्पण जीवन था कि ये सब बाबा के हैं, इन्होंने बाबा को जीवन अर्पित की है, बाबा इनकी संभाल करेंगे, इसलिए खुद संपूर्ण बेफिकर निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह। बाबा का एक पोज आप देखेंगे, हिस्ट्री हॉल के अंदर जाना, एक झरना बह रहा है और झरने के ऊपर पहाड़ को बिस्तर बनाया हुआ है और ऐसे आसन जैसे लेटा हुआ है विष्णु, बहुत सुंदर पोज है, वो बेगरी पार्ट के समय का है, इतनी निश्चिंत स्थिति। लेकिन जब संपूर्णता की लगन लगी, इतना प्यार प्रेम होते भी जैसे कोई चीज पकाई जाती है और जब वो पक करके तैयार हो जाती है तो सब किनारे छोड़ देती है, चिपकना लगा उसका खत्म हो जाता है, ऐसे ही जब बाबा संपन्नता संपूर्णता के समीप पहुंच गए तो सब लगाव से, सब बंधनों से, सब प्रकार की बातों से एकदम मुक्त हो गए, फ्री हो गए। ये उनकी संपन्नता की निशानी थी, उपराम और साक्षी दृष्टा बन गए। मैंपन से भी उपराम, मेरी महिमा हो, मेरे को बच्चे सामने हो, सब बातों से बाबा उपराम हो गए। और उपराम होते 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 कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया, संपन्न बन गया, संपूर्ण बन गया। भले आप हमने साकार में बाबा को इन आंखों से उस समय नहीं देखा, लेकिन उसके बाद हमने अपनी दादियों को देखा है, दादी प्रकाशमणि ने भी 2-3 साल सब बातें, इतना सारा यज्ञ, इतनी सारी जवाबदारियां, लेकिन इतना न्यारी प्यारी आंख ही बंद कर ली, खोलती थी बीच बीच में, देखती थी, बात करती थी, फिर शांत हो जाते थे, सब बातों से उपराम। कभी भी कोई बात अगर दादी को सुनाते थे, कहती थी, पूछती थी, एक बार की बात मैं आपको सुनाऊं, 3 साल तक दादी मधुबन नहीं आई थी पांडव भवन में, तो एक दिन मैं यहां से गया, दादी के बाजू में बैठ गया तो दादी मेरे से पूछती हैं, सब कैसे चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या है, दादी सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ज्ञान सरोवर कैसे है, ना ठीक चल रहा है दादी, बहुत अच्छा चल रहा है। पांडव भवन कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे देखते मेरी तरफ सब अच्छा चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो मेरे मुख से निकला, दादी आपकी शुभ भावनाओं से, संकल्प की शक्ति से सब अच्छा चल रहा है। तो कहती, मेरी भावनाओं से, मेरे संकल्प से, उसके संकल्प से, वो करण करावनहार है। इतना समर्पण बुद्धि थी। जबकि आप हम सब सुनते हैं बाबा की मुरलियों में कि अंत समय में ऐसा समय आएगा जो सारे यज्ञ की कारोबार श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के आधार से चलेगी। और शायद आपको इस समय ये अनुभव हो रहा होगा, यज्ञ को कोई चलाने के लिए बड़ा नहीं है, भले कैसा भी कोई डायरेक्शन नहीं देता, लेकिन इतनी एक्यूरेट हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं, तीनों स्थान, पहले तो एक छोटा सा स्थान था, साकार के समय में ये छोटा हाल था, सारे निर्माण कार्य उसके बाद में हुए हैं। तीनों स्थानों पर आप देखो भंडारे चल रहे हैं, हजारों भाई बहने आते हैं और हर एक इतना भरपूर होके, इतना खुश होकर के जाते हैं, बहुत वंडर खाते हैं, इसको चलाता कौन है, इसको कौन डायरेक्शन देता है, इतनी सारी सब एक्यूरेट कारोबार कैसे चल रही है, समय पर भोजन मिल रहा है, समय पर क्लासेज हो रही हैं, समय पर आने जाने की सब व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, रहने की व्यवस्था इतनी अच्छी, ये संपूर्णता की निशानियां हैं। जब संपन्न आत्माएं बन जाती हैं तो उनके संकल्पों से यज्ञ की कारोबार चलती है। मेरी दादी इस समय, जनकी दादी जी, गुजा दादी जी, देखो कैसे संपन्न स्वरूप में हैं, उस स्टेज में स्थित हैं। कोई भी बात आप लेकर के जाओ, कितना भी विस्तार उनका सुनाना चाहो, तो एक बड़ी हंसी की बात कहती है, मुझे सुनाई नहीं देता है, वैसे भी कान से सुनता कम है, कहते मुझे सुनाई नहीं देता है और मैं सुनना भी नहीं चाहती हूँ। बाबा का यज्ञ है, बाबा का कारोबार है, सब अच्छे से अच्छा है, अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलना है। इसलिए अगर कोई छोटी मोटी बातें होती भी हैं जिसका हम सब कभी कभी वर्णन और चिंतन करते हैं, लेकिन जो संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनके सामने कोई भी प्रकार के प्रश्न आत्मक चिन्ह नहीं आते, क्या, क्यों, कैसे, इन सब संकल्पों पर वो विराम लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, हलचल नहीं करते, सब अच्छा है। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा बिंदी और मेरा बाबा बिंदी, और ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी होने के कारण फुल स्टॉप बिंदी, कोई भी बातों का अधिक विस्तार नहीं करो। विस्तार तो एक मकड़ी की जाल है और उस मकड़ी की जाल में अगर फंस गए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा अपने सब बच्चों को कहता है, बच्चे समय समीप आ रहा है, हर आत्मा अपनी अपनी स्टेज के प्रमाण संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करेगी, करेंगे हर एक, लेकिन अपनी स्टेज के प्रमाण। 108 की विजयी माला में भी एक नंबर और 108 नंबर में अंतर होगा कि नहीं होगा? कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा, तब तो 108 में लगा जाके, उसके अंदर भी कोई न कोई ऐसी बात जिस परसेंटेज के रूप में नीचे ऊपर होगी, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मणका है, समीप, एक दूसरे से समीप है, जुड़ा हुआ साथ है, लेकिन दो विशेषताएं उसकी दिखाते हैं, बहुत डिटैच भी है लेकिन अलग भी नहीं है, जुड़ा हुआ भी नहीं है और अलग भी नहीं है, समान भी है। तो जितनी समानता आती जाएगी उतनी समीपता बढ़ती जाएगी, और पारिवारिक जीवन के अंदर, हमारे इस परिवार के अंदर हमने इन आत्माओं को देखा है, वो सब के प्यारे बनते जाते, सबके प्यारे बनते जाते, सब अपना महसूस करने लगते हैं, वो समाप्त हो जाता है कि फलाने के साथ इनका संबंध है, फलाने के साथ हदें समाप्त हो जाती हैं, सब अपनेपन की फीलिंग करते हैं, उनके बड़े अच्छे प्योर वाइब्रेशन आते हैं, जो आत्मा इस रेस में है संपन्न और संपूर्ण बनने के, उनके समीप आने से आत्मा को बहुत सुख की महसूसता होती है, अपनेपन की महसूसता होती है, हर एक उनके समीप जाना चाहता है। कईयों से आप देखेंगे अगर बैठे होंगे तो लोग किनारा करके चले जाएंगे, उनके सामने भी नहीं जाना चाहेंगे, और कई अगर बैठे होंगे तो सब समीप आके ऐसे घेर लेंगे, मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, दृष्टि लेना चाहेंगे। क्या है आकर्षण? हम देखते थे हमारी परदादी निर्मल शांता दादी थी, यहाँ आंगन में अगर उनको कुर्सी पर बिठा देते थे, इतना सरल रूप, इतना सात्विक रूप, इतने अच्छा आभा मंडल ओरा, जो उनके बैठते ही सब आत्माएं चारों ओर से घेर लेती थी, दादी से बात करूं, दादी को देखूं, दादी से दृष्टि लूं, दादी कुछ वरदानी बोल बोल दें, चारों तरफ से उनको घेर लेते थे। साकार में इन आत्माओं ने अपने मन की स्थिति को इतना सुंदर, स्वच्छ, सकारात्मक बनाया, जो चारों ओर आत्माएं उनके पास जैसे खिंच करके चली आती थी। जैसे जब संपूर्ण चंद्रमा होता है तो संपूर्ण चंद्रमा सबको बहुत आकर्षित करता है, सब देखना चाहते हैं, सबकी नजर चली जाती है अचानक। ऐसे आत्मा जब अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त होती है, सर्व गुण सर्व शक्तियों में बाबा के समान बनती जाती है, तो सबके लिए वो आकर्षण का एक चुंबक बन जाती है, सबको बहुत प्रिय लगने लगती है, सबके प्रति उसके मन के अंदर एक सत्कार की भावना होती है और सबकी बातों को स्वीकार करने लगता है, सबकी बातें उसको स्वीकार अच्छी लगती है, कोई खराब नहीं लगता, कोई कैसी भी बातें सुनाए उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं वो गुणग्राही होने के कारण उसकी नेगेटिविटी पर वो ध्यान नहीं जाता। आप सब इन बातों को ध्यान देना, ये संपूर्णता के चिन्ह हैं। अगर मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूं तो जिनके भी संबंध संपर्क में आऊं वो अपनेपन की फीलिंग, अपनेपन की अनुभूति करे और साथ साथ उनकी बातों को, उनकी विशेषताओं को मैं ग्रहण करके, धारण करके, सुन करके और उसी नजर से उनको सम्मान दूं, उनका सत्कार करूं, उनको उसी विशेषता से देखूं। आज कैसी भी आप कंप्लेन लेके जाओ, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं, दादी को सुना के आ जाओ फलाना फलाना ऐसा है। हम जाते थे दादी, बड़ी दादी जब साथ थी, बहुत समय साथ हम रहे प्रकाशमणि दादी के पास, एक घंटे पहले 15 मिनट पहले भी अगर दादी ने वो उनके विषय में कुछ पढ़ा या कोई बोल के गया कि वो व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, 15 मिनट के बाद ही अगर कोई व्यक्ति दूसरा आ गया और उससे बात करने लगी तो उसकी कोई ना कोई अच्छी बात, उसकी विशेषता का वर्णन करेगी, उसकी कभी कमी और कमजोरी का वर्णन नहीं करेगी, जानते हुए भी जानती है इस आत्मा के अंदर ये है, ये संस्कार है, लेकिन उस संस्कार को जानती है पुरुषार्थी आत्मा है या कोई परवश है इस कारण से ऐसा कर रही है, इसका निजी संस्कार तो बहुत प्योर है, शुद्ध है, वो दृष्टि संपूर्णता के साथ आती जाती है, जिसमें रूहानियत है, बहुत स्नेह है, संतुष्टता है, संतुष्ट करने की भावना है, हर आत्मा संतुष्ट रहे। एक बार एक बाप दादा दादी से ऐसे मिल रहे थे पर्सनल में, तो जब दादी के या दादियों से या पर्सनल बाबा मिलते थे किसी से भी, तो शुरू से लेकर के मुझे भाग्य मिला इस छोटे हाल से, बाबा के कमरे से जब बाबा आते थे तो जितना बाबा ने बोला मैं लिखता जाता था, साथ 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 ही बैठता था पूरा टाइम। तो एक दिन की बात था, इसी मेडिटेशन हॉल में यहाँ बाबा आए थे, मैं यहाँ बैठा था इधर लिख रहा था, तो बाबा ने दादी से एक प्रश्न किया और बड़ा बहुत रमणीकता से पूछा, दादी आपसे सब संतुष्ट हैं? तो दादी बाबा की तरफ देखती रही, बोली कुछ नहीं। फिर बाबा ने रिपीट किया, दादी आपसे सब संतुष्ट हैं? तो दादी को शायद फील हुआ होगा कि शायद बाबा के पास मेरी कोई कंप्लेन गई है, कोई ने कुछ कहा होगा। तो दादी कहती, बाबा वो आप ही सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बाबा ने बच्ची को 95% मार्क्स दे दिए, 5% कोई कोई आत्माएं जो असंतुष्ट हैं उनका कारण वो खुद हैं। कोई न कोई कारण से अगर आप आगे चल करके अनुभव करेंगी वो आत्माएं जो असंतुष्ट हैं कि ये मेरा कारण है, मेरा संस्कार है, इसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। हैं 5-7% जो हैं आत्माएं जो किसी न किसी कारण से कोई न कोई कोई चाहना है, कोई डिमांड है, वो नहीं पूरी कर पाए, उनकी नहीं सुनी, तो नेचुरल है थोड़ा असंतुष्ट तो होंगी ना। लेकिन जो संपन्न आत्माएं हैं वो इतना भरपूर होती हैं जो मास्टर सागर के समान होती हैं। सागर को कहते हैं ना, भरपूर है, संपन्न है। तो ऐसे ही संपन्नता हमारे मास्टर सागर की स्टेज है। और जब हम मास्टर सागर की स्टेज में रहते हैं तो हर एक बात को, किचड़े को भी समाना जानते। सागर क्या करता है, आप कुछ भी डाल दो अपने अंदर ले लेगा और लेकर के वो किनारे लगा देगा कहीं ना कहीं, अंदर लेकर के ऐसे नहीं उसके अंदर वो किचड़ा पड़ा रहेगा, वो अपने आप साइड हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई ने डुबकी लगाई और कुछ ढूंढने के लिए गया तो उसको रत्न ही मिले। बाबा भी हम सब बच्चों को मास्टर सागर बनाना चाहता है, मास्टर प्यार का सागर, मास्टर सुखों का सागर, मास्टर आनंद का सागर। हर गुण में जो बाबा के गुण हैं उन गुणों में समानता आती जाए, हम मास्टर बन जाएं। अनादि गुण बाबा के जो गुण हैं, आत्मा के गुण, उन गुणों में संपूर्णता समानता आ जाए। और आदि जो गुण हैं सतयुग वाले, उन आदि गुणों में भी हम आत्माएं कहां तक परफेक्ट बनी हैं उनको भी चेक करना, क्योंकि सर्व गुण चाहिए। कोई भी गुण कम होगा तो संपन्न नहीं कहलाएंगे, चाहे वो रमणीकता है, गंभीरता है, हर्षित मुक्तता है, सहनशीलता है, ये बहुत सारे हमारे आदि गुण हैं। देवी देवताओं के गुण जो गाए हुए हैं वो आदि गुण और अनादि गुणों में, बाप समान गुणों में समानता आती जाए, वो संपन्नता और संपूर्णता की निशानी है। और उस निशानी को अपने आप में गहराई से चेक करें, देखो अपने आप में कि मैं फरिश्ता बनने वाली आत्मा, संपूर्ण बनने वाली आत्मा के अंदर ये सब क्वालिटीज आती जा रही हैं। कौन सी स्टेज हमारी रहती है? इच्छा मात्रम अविद्या। बहुत सारी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर हैं। आप चेक करेंगे तो आपको 3 बातें चेक कर लो, कौन कौन से बंधन मुझे आत्मा को खींच रहे हैं। जब योग में बैठेंगे तो आपको पता चल जाए, जहां पर भी सूक्ष्म रस्सी होगी वो रस्सी खींचेगी, संबंधों की है, पदार्थों की है, अपनी बुद्धि की, अभिमान की है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है। तो पहले बंधन चेक करो, बंधन कहाँ कहाँ के हैं। और दूसरा सूक्ष्म लगाव की, बहुत सूक्ष्म प्यार, रगें कहाँ कहाँ पर सूक्ष्म में रगें लगी हुई हैं जिसके आधार से मैं आत्मा उसकी तरफ खिंची हुई हूं। और तीसरा एक बहुत दूसरे रूप से चेक करो कि मुझ आत्मा के साथ किसी का भी वैर विरोध, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ऐसी भावनाएं तो नहीं है। यही हमारे संपूर्णता में बाधक है, बंधन है। और योग के अंदर जब आप बैठेंगे तो ये तीनों चीजें, कहीं बंधन खींचेगा, कहीं लगाव झुकाव होगा तो खींचेगा, और किसी से कोई नफरत होगी, घृणा होगी, वैर होगा, विरोध होगा तो खींचेगा। अगर कहीं भी आत्मा खींच रही है, किधर भी भटक रही है, तो एक सेकंड में वो बुद्धि का विमान फास्ट गति नहीं लेगा। जो आज बाबा के वरदान में सुना होगा कि अपने दिव्य बुद्धि के विमान से सैर करो, भक्तों को साक्षात्कार कराओ, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, दूर बैठी हुई आत्माएं आपको अनुभव करेंगी, कोई फरिश्ते मेरे पास आए। लेकिन जब आप दिव्य बुद्धि के विमान से सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे तब। तो अपने इस विमान को बहुत चेक करो कि कहीं पर भी कोई गलत पेट्रोल तो इसके अंदर नहीं है, इसकी स्पीड में कोई बाधक बातें तो नहीं है जो इस विमान को उड़ने नहीं देती है। एक सेकंड में ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। किन किन बंधनों में आत्मा जकड़ी हुई है, कौन कौन से बंधन मुझे आत्मा को खींच रहे हैं? सबसे पहले तो देह का ही बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है। और इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा इस भ्रकुटि आसन पर विराजमान इस देह से अलग हूं। चलते फिरते कर्म करते बार बार देह और देही का अलग अनुभव हो। ये कर्म इंद्रियां जो आत्मा को आकर्षित करती हैं मन के साथ साथ, मन और कर्म इंद्रियां दोनों आपस में मिले हुए हैं। संकल्प उठता है कर्म इंद्रियों के अंदर, वही चंचलता वही उत्तेजना आ जाती है। तो चेक करो कि देह का बंधन, कर्म इंद्रियों का बंधन मुझ आत्मा को आकर्षित तो नहीं करता। संबंधों के बंधन भी कईयों को बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनसे साथ मिला, सहयोग मिला, मदद मिली, तो संबंध भी आत्मा को अपनी ओर बांध करके रखते हैं। इसलिए जब जाना है, वापस जाने का समय है, और बाबा कहता है मैं अपने संपन्न और संपूर्ण बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, संपूर्ण बना करके ले जाना चाहता हूं, तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि कोई भी संबंध और सबसे सूक्ष्म बंधन अपने संस्कारों का बंधन है। संबंधों के बंधन को भी कई आत्माएं बहुत जल्दी काट देती हैं, रहते हैं भी प्राम हो जाते, न्यारी हो जाते। लेकिन जो बहुत समय से कर्म में आई हुई आत्मा कर्म कर चुकी है और उस कर्मों के परिणाम स्वरूप जो संस्कार बन गए, वो संस्कार आप देखेंगे बीच बीच में कभी न कभी उछल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं जब समय मिलता है। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे इन संस्कारों का संस्कार करो, ऐसा योग करो ज्वाला रूप पावरफुल शक्तिशाली जो संस्कार एकदम जल के खत्म हो जाएं, बीच बीच में निकले नहीं। लेकिन देखा यह जाता है कि हम अच्छे वातावरण में रहते हैं, मुरली का अध्ययन भी करते हैं, अच्छे संग में रहते हैं, अच्छा भोजन भी करते हैं, और उस अच्छाई के बीच में रहते रहते जो हमारे अंदर के कड़े संस्कारों दब जाते हैं, दबे रहते हैं, बार बार निकलते नहीं हैं। अगर आपके अंदर क्रोध का संस्कार है और आप बाबा के बच्चे बने हैं और बहुत अच्छे संग में रहे, पढ़ाई पर ध्यान है, अच्छे संग में रह रहे हैं, अच्छी पालना के अंदर चल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, तो क्रोध दबा हुआ रहता है। लेकिन जब चलते चलते कोई ऐसा कारण बनता है, ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी बात आती है, तो वो जो छिपा हुआ क्रोध का संस्कार बाहर आ जाता है, एकदम मुख से वही शब्द निकल जाते हैं, अब शब्द निकल जाते हैं, जोश आ जाता है, वो छिपा हुआ है। और उस छिपे हुए संस्कार पर हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसी बात घट गई, ऐसी कोई घटना आ गई सामने, जैसे कोई ऐसे होते हैं ना जो खूंखार होते हैं, कत्ल किए हुए होते हैं, ज्ञान में आ जाते हैं, और धीरे धीरे ज्ञान में आने के बाद लगता है इनकी बहुत अच्छी जीवन हो गई, बहुत अच्छा लेक्चर देंगे, बहुत अच्छे अनुभव सुनाएंगे। लेकिन अगर कोई घटना उनके साथ ऐसी घट गई अचानक, जो प्यार मिला, पालना मिली, स्नेह मिलता रहा, उसके साथ चलते रहे, तो संस्कार वो छिपा रहा, दबा रहा। लेकिन अचानक वो अगर प्राप्ति नहीं हुई और कोई ने कोई इंसल्ट कर दी, कोई ने कुछ कह दिया तो छिपा हुआ संस्कार फट से बाहर आ जाता गुस्से के रूप में। इस संस्कारों का जो बंधन है, चाहे वो काम विकार का सूक्ष्म संस्कार है, चाहे क्रोध का है, चाहे मोह का है, बहुत सूक्ष्म रगें हैं जड़ी हुई जकड़ी हुई। संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए इन रगों को चेक करना पड़ेगा, इन संस्कारों का संस्कार। इसके लिए आप बहुत गहन तपस्या की जरूरत, बहुत गहन तपस्या चाहिए, गहरी तपस्या, जो अभी हम एक घंटा करेंगे 6:30 से 7:30 तक। उसमें आप ऐसे अनुभव करो जैसे वो संस्कार पिघल रहे हैं, और जब पुराने संस्कार पिघल जाएंगे तो उसकी एक बहुत सुंदर निशानी रिजल्ट दिखाई देगी कि सबके साथ वो मिलनसार बन जाए, संस्कार मिलन की रास हो जाएगी, संबंधों में भी टकराव समाप्त हो जाएंगे, उलझने समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि समस्याएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूप में अगर आती हैं, तो आप उन समस्याओं की जड़ में अगर जाएंगे तो उसकी जड़ है हमारे कोई कमजोर नेगेटिव विचार। हमारे ही कमजोर नेगेटिव विचार उन समस्याओं को सामने ले आते हैं, खींच करके ले आते हैं। होते नहीं है, जैसे एक छोटा सा मिसाल मैं बताऊं कि मान लो आपने ज्ञान मिलने के बाद भक्ति छोड़ दी, और भक्ति छोड़ दी तो आपके जो संबंधी हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, कहेंगे देखना तुमने देवी की भक्ति बंद की है ना, कुछ न कुछ हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया है, और वो नेगेटिव संकल्प उसके अंदर डाल दिया। अब देवी तो कोई नाराज होने वाली है ही नहीं, अगर नाराज होती तो देवी कैसे है। लेकिन हमने जो नेगेटिव संकल्प अपने मन में ले लिया और सोचने लगे कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, तो हमारे ही वो नेगेटिव संकल्प बहुत बड़ा पेपर बन करके हमारे सामने आ सकते हैं। फिर कहेंगे हाँ सचमुच ऐसा हो गया। अब देवी नाराज हो गई क्या, ये देवताएं नाराज हो गए क्या, वो तो कभी नाराज हो ही नहीं सकते, वो हमारे केवल घंटी बजाने से या फूल चढ़ा देने से या प्रणाम करने से, उनके आगे थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाने से खुश हो जाएंगे क्या। लेकिन सचमुच वो आत्मा को अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है, हो जाता है, वो घटना अचानक घट जाती है, तो कहता देखा देवी नाराज हो गए, हमने भक्ति छोड़ी ऐसे इसलिए हो गया। फिर उसके कारण नहीं हुआ, कारण अगर आप उसके खोजेंगे तो हमारे ही कमजोर संकल्प, कमजोर विचार, नेगेटिव विचार उस समस्या को समीप ले आते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी स्थान पर जाओ, विचारों की क्वालिटी को बहुत अच्छे से अच्छा बना करके रखो, बहुत सकारात्मक। जब भगवान आपका साथी है, सर्वशक्तिमान आपके साथ है, जब आपने उसके साथ अपने सब संबंध जोड़े हैं, उसके साथ कंबाइंड होकर के चलते हैं, कल बाबा कह रहे थे ना, रूह सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड है, संगम युग पर ही हमारा भाग्य है कि हम सब आत्माएं रूह सुप्रीम रूह को साथ साथ रख करके चलती हैं। अगर ये स्मृति है, विस्मृति हो गई तो सुप्रीम रूह अलग हो गया, स्मृति के आधार से ही हम उसके साथ कंबाइंड रह सकते हैं। और जब सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान स्वयं हमारे साथ है, सबका रक्षक है, सबका रखवाला है और हमारा बाप है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी रक्षा नहीं होगी या हमें गाइड नहीं करेगा, हमें टच नहीं करेगा, करेगा। लेकिन वो स्मृति रहे, वो विचार हमारे चले कि हमारे साथ कौन है। बहुत ऊंचे सोमान में रह करके अगर बाबा को साथी बना करके हम चलते हैं तो कोई भी ऐसी बात होने वाली भी होगी तो आपको पहले से पता चलेगी, आप अपने आप को सेफ कर लेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता बच्चे उसको सदा साथी बना करके कंबाइंड होकर के चलो, और उसके आधार से बहुत निश्चिंत स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि कलयुग के अंदर परिस्थितियां बहुत विकराल रूप में हर एक के सामने आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, परीक्षाओं में, परिस्थितियों में, कोई भी प्रकार की समस्या में स्थिति एक रस रहे, अचल रहे, अडोल रहे, उसके लिए बहुत समय से साक्षी दृष्टा रहने का अभ्यास चाहिए। बहुत समय से साक्षी न्यारे, कोई भी बात आएगी ऐसे लगेगा ये तो खेल है, खेल की रीति से चल रहा है, नाटक के अंदर ये भी सब सीन सीन ये आनी है, आती है, लेकिन नाटक का शब्द क्या है, अर्थ क्या है, ना अटक, अटकना नहीं, बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी, ज्यादा मूंझना नहीं, ठीक है, उलझना नहीं है, सब बाबा अपने आप ठीक कर लेगा। संगम युग कल्याणकारी युग है, बाबा हमारा कल्याणकारी है, मैं आत्मा उसकी कल्याणकारी बच्ची हूं, कल्याण के कर्तव्य के लिए उसने मुझे निमित्त बनाया है। जब एक अंदर बाहर से एक बहुत संपूर्ण निश्चय कि हर सीन में हर बात में कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव होने लगेगा। ये बुरा हो रहा है, दिखाई देता है, कई बार लगता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी है, और हमारे आगे क्यों आ गई, हम तो भगवान के बच्चे हैं। जैसे एक बात सुनाऊं, एक भाई हमारे साथ था यही मधुबन के बीच में, मुझे सेवा साथी मिला, और वो सेवा साथी साथ बहुत अच्छी तरह से सब प्रकार की सेवाओं में सीख गया, मदद करने लगा, माय डिपार्टमेंट में पूरा राइट हैंड बन गया। अचानक यहां जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो मैं बैठा था, मेरे से कहता है भाई जी मैं ज्ञान सरोवर का ऑफिस देखने के लिए जाऊं, तो मेरे मुख से निकला भले जाओ। तो स्कूटर उसने उठाया और स्कूटर उठा करके उधर जाने लगा, जाते जाते पता नहीं रास्ता कैसे मोड़ा, वो शांतिवन की तरफ मुड़ गई गाड़ी उसकी, और मुड़ते ही सामने एक बस आई और बस के नीचे स्कूटर चला गया, उसके पैर पर पहिया चढ़ गया बस का, और मैं समझता हूं शायद 10 या 12 घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, बहुत बड़ी बात थी, यंग लड़का था, बहुत अच्छा भाग दौड़ करने वाला, यूथ विंग का मेंबर भी था, बहुत सेवाएं करता था, बहुत हलचल हो गई, माना ब्राह्मणों के अंदर इतना समर्पित, इतना अच्छा बाबा का बच्चा कैसे चला गया, कैसे चला गया, क्या हो गया, बाबा ने कोई रक्षा नहीं की। दूसरी ओर एक एक्सीडेंट उसी दिन और हुआ था, उसमें 8-10 लोग थे, गाड़ी जा रही थी, मारुति गाड़ी में बैठे थे बड़ी वाली में, और वो पलट गई और सामने से कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसमें सब के सब सुरक्षित निकल आए, जरा भी खरोच भी नहीं आई, उन्होंने कहा मेरी बाबा ने रक्षा की। अब दो प्रकार की बातें, दो प्रकार की घटनाएं सामने हैं। बाबा को 3-4 दिन के बाद आना था, बाबा आए, बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा बच्चे एकदर्शी हैं इसलिए अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, बाबा त्रिकालदर्शी है, बच्चे को कहां पर किस सेवा में ले जाना था, वो बहुत फास्ट बच्चा था और बाबा को नई दुनिया के लिए फास्ट बच्चों की जरूरत थी, वो कोई कारण तो बनेगा ही शरीर छोड़ने का, इसलिए ज्यादा संकल्प क्यों चलाते हो, इसमें भी कुछ राज है, कुछ कल्याण है, बाबा जानता है उसका भविष्य क्या है, 1 सेकंड में पुलिस स्टॉप लगा दिया। बाबा अपने बच्चों के संकल्पों में हलचल नहीं देखना चाहते, कुछ भी हो रहा है, कैसी भी घटनाएं घटे, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई ऐसे ड्रामा के राज हैं, क्योंकि बाबा को तो खेल लगता है और हम लोग समझते हैं हम खेलते खेलते फंस गए हैं, हमारा चला गया, हमारे संबंधी चले गए, हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हम इन हदों में बंधे हुए हैं, और त्रिकालदर्शी बाबा बहुत बेहद के नाटक को बहुत साक्षी होकर के देखता है और अपने बच्चों को उसी स्टेज पर स्थित करना चाहता है, बच्चे उस स्टेज पर आ जाओ, आपको भी ये सब खेल लगेगा, कोई आपकी ग्लानी कर रहा है, ब्रह्मा बाबा की बहुत ग्लानी हुई ना, ग्लानी कर रहा है, अपमान कर रहा है, बहुत सारी बातें बाबा के आगे पेपर बन के आई, और बाबा कहता था बच्चे इनका दोष नहीं है, बच्चे कहते हैं चलो बाबा आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें आपके लिए लिखी गई हैं, अखबार में आ गया है, ये है, मैं इसके ऊपर मानहानि का केस कर दूं। और बाबा कहता बच्चे कोई नहीं, क्षमा करो, कुछ नहीं, भूल जाओ। कितनी ऊंची स्टेज थी, माना अपकारी के ऊपर भी एक उपकार की भावना, ये संपूर्णता की निशानी है। बहुत परोपकारी भावना, कोई भी बच्चे का ड्रामा में दोष नहीं है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, इस बेहद की दृष्टि से बाबा ने अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना ली। जब बाबा को समाचार मिलता था, सामने सामने कोई हमारे जब फेयर होते, मेले होते थे, प्रदर्शनी लगाते थे, इधर हमारा पंडाल लगा है, उधर माइक लगा करके सामने से कोई गालियां दे रहा है ब्रह्मा कुमारी को, सामने से एकदम उल्टी उल्टी बातें बोल रहा है, इनके पास कोई नहीं जाना, ये जादू कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी। बाबा के पास समाचार आता बच्चे कोई, अभी जितनी गालियां दे रहे हैं ना, ये गिन गिन करके तुम्हारे पर फूल चढ़ाएंगे, जितनी गालियां देते हैं गिन गिन करके उतने ही फूल चढ़ेंगे तुम्हारे। अब कितनी स्थिति ऊंची होगी आप बता सकते, बताओ। है ऐसी स्थिति, समान स्थिति, बाबा के समान, तब वो संपूर्ण बना। हम सबको भी बाबा कहता बच्चे सब बातें आएंगी, होने दो। एक ऊंची साक्षी दृष्टा की स्थिति में, उपराम स्थिति में बैठ करके इस बेहद के नाटक को देखो, और बहुत अंदर से बेहद का वैराग्य है, ये सब जाने वाला है, सब खत्म होने वाला है। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हो रही हैं, कुछ छोटा सा कुछ नुकसान हो गया, कुछ बात हो गई, तो बेहद का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, बहुत बड़ा, सारी सृष्टि को समाप्त होना है। कभी विचार करके देखना, एकांत में बैठ करके विचार करना, जो हम इतना बड़ा बखेरा, इतना बड़ा विस्तार देख रहे हैं, वो सब ऐसे चला जाएगा, बह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जिसको सब ने अपना बना करके रखा है, पकड़ के रखा है, एकदम उस दिन बाबा ने मुरली चलाई, हवा आएगी उड़ा ले जाएगी, आग आएगी जला ले जाएगी, पानी बहा ले जाएगा, इतनी बड़ी दुनिया की सफाई होने वाली है, कितना नुकसान होगा, लोगों को नुकसान लगता है, और बाबा कहता है मेरुआ मौत मलू का शिकार। इतनी साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए, ऐसी सीन्स को देखने के लिए उस संपूर्णता की स्टेज चाहिए। कुछ नहीं मेरा है, अगर मैं और मेरे में जरा भी बुद्धि लटकी हुई है, संपूर्णता की स्टेज बहुत दूर है। जहां जहां भी मेरे पन की रस्सी हो, मेरे संबंधी हैं, मेरा धन है, मेरा वैभव, मेरे पदार्थ, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी दुकान, जितना मेरा मेरा है, बाबा कहते सब फेरा है, कुछ तेरा नहीं है, क्यों तुमने अपना बना के रखा है? और अपना बना के रखा है तो क्या होगा, दुखी दुख है उसके अंदर। कहते हैं एक सेठ जी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और बहुत हेरा फेरी करके बनाई, उनकी अंदर की इच्छा थी कि मैं अपने पोत्रे धोत्रों को बड़ा सुखी देखना चाहता हूं, जो आएंगे आराम से रहें, खाएं, पिएं, मौज करें। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके, खुद एक छोटी झोपड़ी में रहे, लेकिन बिजनेस करके, पैसा इकट्ठा करके, जैसे भी इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। अचानक एक दिन उस बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, तो बच्चे लोग दौड़ करके आए, बाबूजी बाबूजी वो बिल्डिंग जल रही है, जल रही है, कुछ आग लग गई है। तो बस उनको देखते ही फिट पड़ गया, कहने लगे अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं, मेरे सामने मेरी सारी जिंदगी की कमाई, जो इतनी मेहनत से, इतनी परिश्रम से मैंने की, ये सारी ऐसे जल रही है। बेचारे तड़फने लगे, एकदम बीपी बढ़ गया, एकदम टेंशन में आ गए। उनका बच्चा बड़ा समझदार था, दौड़ के आया, कहता बाबूजी क्या हुआ? अरे बेटा अभी क्या जी, क्या बताऊं तुमको, मैंने कैसे कैसे पाप कर्म करके, हेरा फेरी करके बिल्डिंग बनाई और सब जल रही है। कहता बाबूजी बाबूजी आपको पता नहीं है, ये बिल्डिंग तो मैंने बेच दी थी, ये तो अपनी है ही नहीं, ये देखो मेरे हाथ में एक चेक है। ऐसे कागज का टुकड़ा चेक दिखाया और दिखा करके कहता वो मेरी नहीं है, बस मेरी नहीं है। वो बुद्धि में एकदम विचार बदला और खुश हो गया, अच्छा वो मेरी नहीं है, सिर्फ विचार चेंज हुआ। जब तक वो मेरापन था तब तक वो बस बेड पर जाने वाला, और जब उसके विचार परिवर्तन हो गए, मेरी नहीं है, बिल्डिंग तो जल रही है लेकिन मेरी नहीं है बस। तो बाबा भी हम सब बच्चों को कहता है, बच्चे तुमने जिसको मेरा समझा है, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, अब इनसे एकदम नष्टो मोहा बन जाओ, कुछ भी मेरा नहीं है, साथ चलने वाला नहीं है, ये सब बाबा तेरा है। जब बाबा को सब कुछ ऐसे समर्पित कर देंगे, सब जवाबदारियां बाबा को दे देंगे, बहुत डबल लाइट बन जाएंगे, और डबल लाइट स्थिति ही आपको फरिश्ता बना देगी, संपन्न और संपूर्ण बना देगी। यह है समर्पित जीवन, जिसके अंदर कोई भी अपने संकल्प न चले, तन से समर्पित, मन से समर्पित, धन से समर्पित, जो कुछ बाबा आपने दिया ये सब है ही आपका, मेरा क्या है। आज हमारे अंदर अगर कोई विशेषताएं हैं, जब कोई वर्णन करता मैं कहता ये किसने दिया है, क्यों मेरे विशेषताओं का इतना बखेरा है, मैं कहां से लेके आया था, बाबा ने दिया ना, बाबा ने ऐसा बनाया है, उसके गुणगान करो, देहधारियों के क्या गुणगान करेंगे, बनाने वाला तूने बनाया है। तो जब हम बाबा को इतना समर्पित कर देते हैं तो मुझे तो ऐसे लगता है संपन्नता और संपूर्णता बहुत समीप अनुभव होती, दिखाई देती है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। लेकिन जब मेरा मेरा है, कहीं लगाव है, झुकाव है, इच्छाएं हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अरे क्या चाहिए, क्या ले जाएंगे साथ में। बाबा दो रोटी खिलाने के लिए तो बंधा हुआ है, खिलाएगा पिलाएगा आराम से रखेगा, लेकिन हमने बहुत सारा विस्तार कर लिया है। बाबा कहता है विस्तार को हप करो, खत्म करो, कुछ विस्तार में नहीं रखो। सिर्फ अगर कोई विचार चलते हैं विस्तार के तो बाबा को मैं कैसे प्रत्यक्ष करूं, उसके लिए प्लानिंग जरूर करो, बाबा प्रत्यक्ष हो जाए मेरे चलन से, मेरे चेहरे से, मेरे जीवन से, मेरे हर कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता हो, उसके लिए मैं अच्छा कुछ करूं, बाकी कोई और तमन्ना नहीं है, कोई ऐसी आशाएं नहीं, इतना एकदम अनासक्त बनकर प्राम बनकर के, साक्षी दृष्टा बनकर के, सबसे न्यारे सबके प्यारे संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन जब तक मतभेद हैं, टकराव हैं, तेरे मेरे की भावनाएं है, हदों में बुद्धि लटकी हुई है, तब तक मंजिल दूर है, दूर है। इसलिए दूरी को खत्म करना है, समय को समीप लाना है, जहां दूरियां दिखाई दें को ये क्या करना मुझे, किसके लिए मैं दूरी बना के रखा, सब दूरियां समाप्त हो जानी चाहिए, संस्कार मिल जाए एकदम, हम सब एक हैं, एक के हैं, बाबा आप मिल गए बाकी और क्या चाहिए। तो बाबा को, दिलवाला को दिल में बिठा लो और उसके साथ सब संबंध निभाओ तो अपने आप संपूर्णता समीप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए जो कुछ बाबा है सब तेरा है, ट्रस्टी हो जाओ। ट्रस्टीशिप की भावना के अंदर जरा भी अमानत में ख्यानत नहीं करना है, बुद्धि नहीं चलानी है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, समय भी बाबा की अमानत है, ये समय भी बहुत वैल्यूबल है। तो जो कुछ बाबा ने हम सबको दिया है वो बाबा के कार्य में सफल हो जाए, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, संपन्नता और संपूर्णता समीप आ जाएगी, सर्वगुण सर्व शक्तियों में हम समान बन जाएंगे। ओम शांति। अभी सब अनुभव के सागर में समाएंगे, अभी हम सब 3 स्टेप में योग करेंगे, 15-15 मिनट की एक ड्रिल है। सबसे पहले हर एक अपने भ्रकुटी आसन पर बैठकर अपने चमकते हुए सितारे को बीज के रूप में देखो, जैसे बाबा बीज रूप है, वृक्ष पति है, और उस बीज से तना और सब शाखाएं निकली, सारे वृक्ष को बीज से शक्ति मिलती है। इतना बड़ा मनुष्य सृष्टि का झाड़, उसका बीज रूप हमारा बाप और उसके आधार से सारा वृक्ष फलीभूत हो रहा है। साथ में जड़ में बैठी हुई आदि देव और आदि देवी और उसके अनन्य बच्चे जो सारे वृक्ष को शक्तियों का जल दे रहे हैं, ऐसी सुंदर अनुभूति हम सब अपने बीज रूप स्थिति द्वारा बाबा के बहुत समीप जड़ों में बैठकर पूरे वृक्ष को इमर्ज करेंगे, जैसे तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, ऐसे मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष के तने में बैठकर अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति से पूरे वृक्ष को लाइट और माइट का दान दे रही हूँ, शक्तियों का जल प्रवाहित कर रही हूँ। ऐसे शुद्ध संकल्प के आधार से सब अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो और पूरे वृक्ष को इमर्ज करके आदि पिता और आदि देवी माँ के साथ तपस्वी बन करके पूरे वृक्ष को शक्ति दो। 15 मिनट के बाद स्टेप चेंज करेंगे, गीत बजेगा, आपको और कोई संकल्प रचने की जरूरत नहीं है। जो संकल्प मिल रहे हैं उसके आधार से आप तपस्या करो। आज के दिन तपस्वी मूरत मैं आत्मा कैसे बीज बनकर के पूरे वृक्ष को शक्ति दे रही हूँ, सकास दे रही हूँ, सर्व आत्माओं को बहुत स्नेह का जल मिल रहा है, शक्ति का जल मिल रहा है, ऐसे तपस्वी मूरत बन करके तपस्या करो। अभी हम सब सागर के तले में शीतल गोद ज्ञान सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर बाबा, उस सागर के तले में चले जाओ। शीतलता का, शांति का, सुख का गहन अनुभव करो। संकल्पों की हलचल समाप्त, मैं आत्मा उस लौ में लीन हो गई हूँ, उस प्यार के सागर में समा गई हूँ, उसकी शीतल गोद में विश्राम कर रही हूँ। ऐसे सुंदर अनुभव के संकल्प करते करते असीम शांति, असीम सुख का अनुभव कर, सुख शांति आनंद से भरपूर मैं आत्मा बाबा के समान बन गई हूँ। सागर के बीच में एकदम तले में चले जाओ। अभी हम सब अपने बुद्धि रूपी विमान से सूक्ष्म वतन और मूल वतन की सैर करेंगे। हर एक अपने नयनों के सामने दिव्य बुद्धि को इमर्ज कर, ऐसे लगे जैसे कोई बहुत सुंदर मन का उड़न खटोला जिस पर मैं आत्मा विराजमान हूँ, और उड़ते उड़ते बाबा के पास अव्यक्त वतन, जहाँ बाबा अपनी भुजाएं फैलाए हुए हम सबका आवाहन कर रहे हैं। हम सब बाबा की स्नेह की भुजाओं के बीच में समा गए हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे जाओ अपने मूल वतन का अनुभव करके आओ। ज्ञान सूर्य बाबा की लाइट और माइट पवित्र किरणें लो और पूरे ग्लोब को दो, तो हम सब पहले अव्यक्त वतन में बाप और दादा के सन्मुख चलेंगे, कुछ समय बाबा की बाहों का प्यार का अनुभव करेंगे और फिर उस निराकारी वतन से पवित्र किरणें लेते हुए पूरे ग्लोब को देंगे। चलो इस यात्रा पर सुंदर अनुभूति के सागर में समाने का अनुभव करो। पहले अव्यक्त बाप दादा के सानिध्य में और फिर उस ज्ञान सूर्य बाबा के समीपता का अनुभव करो।